नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, पात्र नागरिक सामान्य निवास वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की आज पटना में बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। पहली बार निजी नौकरी में आए कर्मचारियों को 15,000 रूपए तक का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। और बांका में बनेगा प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि पात्र नागरिकों को केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहिए जहां के वे सामान्य निवासी हैं। उन्होंने बताया कि मूल निवास के आधार पर मतदाता पंजीकरण कराना लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार गैर कानूनी है। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश में लगभग 60% मतदाताओं को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक के दौरान चुनाव में विजय संकल्प सहित कई प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल करेंगे। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरी सृजन का लक्ष्य है। इस योजना पर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रूपए तक मिलेगा।
फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा।
क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर हेमंत कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना से 3.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को 2 किस्तों में वेतन दिया जाएगा।
अगले 2 वर्षों में सरकार का लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च करने का इसमें लक्ष्य है और उसके द्वारा लगभग 2 करोड़ रोजगार सृजन का उद्देश्य है, जो पहले से किसी जॉब में नहीं है। और कुल लगभग 3.5 करोड़ लोग इस तरह से एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। उनको सरकार, जब वो नई जॉब में आएंगे, तो उनको 1 महीने का 15,000 तक वेतन प्रदान करेगी। वो वेतन उनको 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहला किस्त उनको जब वो 6 महीने की लगातार सेवा किसी स्थापना में जब वो पूरा करेंगे तो उनको मिलेगा, और दूसरा किस्त उनको 12 महीने की लगातार सेवा पूर्ण करने के बाद मिलेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव ने बताया है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास के लिए लगभग 883 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसमें पुराने मंदिर के उन्नयन के लिए 137 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत छात्रों को 3 महीने से 12 महीने के इंटर्नशिप के लिए राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। जो 12th पास है उनको इंटर्नशिप के रूप में 4,000 रूपए दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5,000, स्नातक है स्नातकोत्तर का मानसिक इंटर्नशिप 6,000, अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2,000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा, और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5,000 प्रतिमा अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो लाभुक हैं ये DBT के माध्यम से भुगतान होगा।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा।
कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रूपए मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य की पुरानी और विलुप्त हो रही कलाओं को बचाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। राज्य की बिजली कंपनी ने बांका जिले में परमाणु बिजली घर बनाने के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत 500 मेगावाट की क्षमता वाले प्लांट की स्थापना की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटना में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की मांग पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में परमाणु बिजली घर बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया था। बिहार सरकार ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच करवाने का फैसला किया है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की टीम मौके पर जाकर घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि यदि जांच रिपोर्ट में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आती है तो तेलंगाना सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जाएगा। गौरतलब है कि इस हादसे में बिहार के 3 श्रमिकों की मौत हुई है जबकि 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने गंगा में अवैध बालू खनन से जलीय जीव डॉल्फिन को होने वाले खतरे को लेकर बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। NGT ने कहा है कि अवैध खनन से गंगा की सहायक नदियों गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा और परमान नदी में भी डॉल्फिन पर संकट बढ़ गया है। इधर खनन और भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों में पदाधिकारियों से इस मामले में दर्ज FIR की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जीविका दीदी की ओर से तैयार की गई पोशाक दी जाएगी। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की उपस्थिति में दोनों विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसके तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के 52 लाख बच्चों को 2-2 सेट पोशाक दी जाएगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने केंद्र सरकार से खरीफ मौसम 2024-25 में चावल आपूर्ति की तिथि बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में श्री कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तिथि विस्तार नहीं होने की स्थिति में पैक्सों और व्यापार मंडलों पर 1500 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ का अनुमान है, इसलिए आपूर्ति की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि इस वर्ष अब तक 21% धान की खरीद हुई है। मौसम विभाग ने इस महीने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार जून माह में भी प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज पश्चिम चंपारण और कैमूर जिलों समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही राज्य के पश्चिमी चंपारण एवं कैमूर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। नवादा जिले के गोविंदपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त वाहन जांच के दौरान एक टैंकर से 500 कार्टन शराब बरामद की है। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने एक ई रिक्शा चालक की पिटाई के मामले में मेहूश थाना अध्यक्ष परविंद्र चंद दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार और युवाओं को आर्थिक मदद के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार ने किए बड़े ऐलान। हिंदुस्तान लिखता है, सुपरवाइजर लिपिक अब कुशल श्रमिक माने जाएंगे। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, उपभोक्ता लोन की हिस्सेदारी बढ़ी, क्रेडिट कार्ड बिल पर्सनल लोन चुकाने में जा रही बड़ी कमाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, पात्र नागरिक सामान्य निवास वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज पटना में बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी, पहली बार निजी नौकरी में आए कर्मचारियों को 15,000 रूपए तक का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। और बांका में बनेगा प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।